नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ वीर सांघवी का लेख, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे CAA भी पश्चिम की इमिग्रेशन नीतियों से मिलता जुलता है और उसके अपने राजनीतिक उद्देश्य हैं। यदि आप ये नहीं मानते कि राजनीति अब पहले से कहीं अधिक वैश्विक हो गई है, तो ज़रा एक नज़र डालें कि भारत और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। ब्रिटेन में इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को चिंता है कि ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों की संख्या को सीमित करने में उनकी सरकार की असमर्थता के कारण कंजर्वेटिव पार्टी का आधार खिसक जाएगा। अमेरिका में एक मुद्दा जिसे दक्षिणपंथी रिपब्लिकन कभी नहीं छोड़ेंगे, वो है इमिग्रेशन। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीमा पर दीवार बनाने की कसम खाई है और मैक्सिको को इसकी कीमत चुकाने की बात कही है, तब से उनके समर्थक इमिग्रेशन को प्रमुख मुद्दा मानते हैं। वर्षों तक हमने सोचा कि ये पश्चिम की चिंताएँ थीं। जब ब्रिटिश और अमेरिकी राजनेताओं द्वारा इमिग्रेशन पर हमले शुरू किए गए, तो हमें लगा कि हमें टारगेट किया गया। आखिरकार सब कॉन्टिनेंट के अप्रवासी अक्सर ऐसे अभियानों का विषय होते थे, और डेविड कैमरन के शासन के तहत ब्रिटेन ने वास्तव में अप्रवासियों को जहां से वे आए थे वहां वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करने को डिपोर्टेशन बैन तैनात की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन हमारे अपने आम चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। बेशक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारी बहस इमिग्रेशन के बारे में है, इसके बजाय हम CAA के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके मूल में बहस विभिन्न प्रकार के अप्रवासियों के बीच अंतर करने और दूसरों का स्वागत करते हुए कुछ को हतोत्साहित करने के बारे में है, जो कि सभी पश्चिमी बहसों के जैसा ही है। हम जिन अप्रवासियों का स्वागत करते हैं और जिनका स्वागत नहीं करते, उनके बीच धर्म के आधार पर अंतर करते हैं। पश्चिम में वे नस्ल को आधार मानते हैं, यही एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर है। अन्यथा ये नए तरीके से वही पुरानी दक्षिण पंथ बनाम वामपंथ की लड़ाई है। CAA को हमारे पड़ोस में हिंदुओं की मदद करने के साधन के रूप में पेश किया गया है। अगर इसे सीधे सीधे देखा जाए तो ये ठीक ही लगेगा। इसके घोषित उद्देश्य इस प्रकार हैं। हिंदुओं और अन्य गैर इस्लामिक धर्मों के लोगों को हमारे पड़ोस में भयावह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान में तालिबान खुलेआम हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है। बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं का कहना है कि उन्हें लगातार ऐसा महसूस कराया जा रहा है जैसे देश में उनका कोई स्थान नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। तो ये लोग कहाँ जाएं? यदि दुनिया में सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाले देश भारत में भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी, तो ये सबसे अच्छे रूप में क्रूर उदासीनता और सबसे खराब रूप में असाधारण क्रूरता का काम होगा। CAA का उद्देश्य इन लोगों को भारतीय नागरिकता देना है, ताकि वे भेदभाव से मुक्त होकर भारत में नया जीवन जी सकें। जब आप इस तर्क को सुनेंगे तो CAA के महत्व से इनकार करना मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि दुनिया में हर जगह हमेशा अप्रवासन संबंधी बहसों के साथ होता है, समस्या इस बहस या चर्चा के बीच में कहीं छिपी है। ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से ये विषय नस्लवाद पर टिका रहा। 1950 के दशक में अंग्रेज़ों ने भारतीयों, पाकिस्तानियों और पश्चिमी भारतीयों का स्वागत किया और उन्हें देश के ट्रेन, बस, अस्पताल और इसी तरह के अन्य बुनियादी ढांचे को चलाने के लिए नौकरियाँ दी। 1960 के दशक तक जैसे जैसे अधिक से अधिक भूरे लोग पहले की लीली सफ़ेद सड़कों पर दिखने लगे, तो इसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई। इसका नेतृत्व इनॉक पॉवेल जैसे नस्लवादियों ने किया था, लेकिन यहां तक कि लेबर पार्टी, जिसने लंबे समय से इमिग्रेशन पर ऊपरी सीमा तय करने का विरोध किया था, उसने भी अपनी नीति इसको लेकर बदल दी। ब्रिटानियों ने ब्रिटेन में काले और भूरे लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का एक अनोखा ब्रिटिश तरीका खोजा। जबकि दक्षिण अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और अन्य श्वेत लोगों को ब्रिटेन में आने की अनुमति जारी रखी। उन्होंने पितृसत्ता नामक एक श्रेणी का आविष्कार किया। यदि आपके दादा दादी में से एक का भी जन्म ब्रिटेन में हुआ है, तो आपको यहाँ रहने का अधिकार है। चूंकि ब्रिटेन में नई जिंदगी की तलाश कर रहे अधिकांश असहाय पश्चिम भारतीय इस मानदंड पर खरे नहीं उतर सके, इसलिए उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई, श्वेत दक्षिण अफ्रीकी आदि को इसमें कोई समस्या नहीं हुई। अमेरिका में बहस नस्ल को लेकर रही। डोनाल्ड ट्रंप के लगभग सभी हमले हिस्पैनिक लोगों पर रहे हैं, लेकिन अमेरिका आने की इच्छा रखने वाले श्वेत लोगों को लेकर उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। वो मुसलमानों के भी खिलाफ हो गए और मांग की कि किसी भी मुसलमान को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। यह असंवैधानिक है, इसलिए जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो कुछ ऐसे देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जो मुस्लिम बाहुल्य वाले थे। हमारे CAA के साथ समस्या ये है कि कुछ कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह असंवैधानिक भी हो सकता है। हमारे गणतंत्र के संस्थापक सिद्धांतों में से एक हमेशा यह रहा है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरी ओर CAA विशेष रूप से धर्म केंद्रित है। इससे मुसलमानों को छोड़कर सब कॉन्टिनेंट के सभी धर्मों के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण होना भी है। कानून का मूल आधार ही मुसलमानों को बाहर रखना है। CAA को सही बताने वालों का कहना है कि यह तर्कसंगत है। जिन लोगों की वो मदद करना चाहते हैं वे मुस्लिम बहुल देशों में भेदभाव का शिकार रहे हैं और इसलिए वहाँ से भाग रहे हैं। इसलिए इस कानून में मुसलमानों को भी शामिल करना बेतुका है। और हाँ, ये सच है कि पड़ोस में गैर मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर मुसलमानों के साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी ये उन लोगों की तरफ से होता है जो अन्य धर्मों का पालन करते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भयानक उत्पीड़न का सामना करते हैं और कुछ इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदायों पर भी अत्याचार किया जाता है। उन्हें शरण देने से इनकार क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं? इसका बिल्कुल छोटा सा जवाब है हाँ। CAA के दो एजेंडे हैं, एक बिल्कुल खुला और मानवतावादी है, दूसरा कम खुला और लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश हिंदू और सिख ये स्वीकार करेंगे कि यदि उनके समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान में सताया जा रहा है तो भारत के लिए उन्हें एक नया घर देना सही है, इसलिए वो एजेंडा वास्तव में विवादास्पद नहीं है। लेकिन एक और एजेंडा चल रहा है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बाहुल्य वाले देशों की सीमा वाले इलाकों में, इन देशों से अप्रवासन को लेकर काफ़ी गुस्सा है। चूंकि बांग्लादेश में मुसलमानों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए प्रवासी आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत आए हैं। सरकार जानती है कि जनता में नाराज़गी है और इसलिए जो कोई भी अवैध मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करता है या कार्रवाई करता हुआ देखा जाता है उसे राजनीतिक समर्थन मिलता है। निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत कम समर्थन है जो अन्य मुस्लिम प्रवासियों जैसे रोहिंग्या आदि को भारत में बसने की अनुमति देना चाहते हैं। CAA का विश्लेषण यह किया जाता है कि यह मुस्लिम प्रवासियों और पड़ोसी देशों के हिंदुओं के बीच अंतर करता है। यदि सरकार मुसलमानों को शामिल करने के लिए अधिनियम का दायरा बढ़ाती है तो CAA राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय हो जाता है और इसलिए निरर्थक हो जाता है। इसलिए CAA के प्रावधानों से मुसलमानों को खुलेआम बाहर रखा गया है। क्या इसे और अधिक चतुराई से किया जा सकता था? आखिरकार अंग्रेज़ों ने भूरे और काले लोगों को बाहर रखने के उद्देश्य से नस्लवादी अप्रवासन और नागरिकता अधिनियम सफलतापूर्वक पारित किया। इसने राष्ट्रमंडल नागरिकों के लिए फ्री एंट्री के सिद्धांत को त्याग दिया, जबकि यूरोपीय संघ के नागरिकों को फ्री एंट्री की अनुमति दी। लेकिन यह इतनी चालाकी से किया गया कि इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकी कि यह नस्लवादी है। तो क्या BJP सरकार भी CAA के साथ ऐसा ही कर सकती थी? मुझे इस बात में संदेह है। जब तक यह अधिनियम विशेष रूप से मुसलमानों को बाहर नहीं करता, यह अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। और फिर भी ऐसे बहिष्करण गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करते हैं, इसलिए इस पर कानूनी लड़ाई होगी। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने तक इसे लेकर महीनों तक लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि तब तक लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा और BJP सियासी जंग जीत चुकी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे दिप्रिंट सुप्रभात के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।